एक और उलझन भरी रात गुजरी और नई उम्मीदों के साथ एक नया सवेरा हुआ। रोज की तरह सब अपने अपने काम निपटाने लगे। आरवी ने भी सुबह के काम खत्म किए, फिर अंशु को तैयार करके उसे स्कूल छोड़ने के लिए चली गई। दूसरी तरफ अर्जुन आधी रात के बाद जाकर सोया था और सुबह उसकी नींद भी जल्दी ही खुल गई थी। अभी 6 ही बज रहे थे। अर्जुन ने कुछ सोचा, फिर फ्रेश होकर नीचे चला आया। उसने अमरजीत जी के कमरे को देखा जो अब खुला था। कुछ सोचते हुए वो बाहर की तरफ बढ़ गया। बाहर लॉन में एक तरफ अमरजीत जी बैठे हुए थे, पर वो वहां होकर भी वहां नहीं थे। शायद वो किसी गहरी सोच में गुम थे। उनके चेहरे पर दुख, बेबसी जैसे कई भाव झलक रहे थे और आंखों को देखकर लग रहा था जैसे वो ठीक से सोए नहीं है। अर्जुन कहीं ना कहीं उनकी इस हालत की वजह समझ रहा था। उन्हें इस हाल में भी वो खुद कुछ उदास हो गया। आखिर वो उसके डैड था तो उसे उनसे फर्क कैसे नहीं पड़ता। उसने गहरी सांस छोड़ते हुए खुद को नॉर्मल किया और उनके तरफ बढ़ गया। अंदर चलिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अचानक अर्जुन की आवाज़ कानों में पड़ने पर वो एकदम से होश में लौटे। निगाहें उठाकर देखा तो अर्जुन उनके ठीक सामने खड़ा था और उनके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। अगर आपको हम पर कोई और आरोप लगाना है तो हम पहले ही स्वीकार करते हैं कि हम ही दोषी हैं। आपको अपने शब्दों को हम पर व्यर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी आवाज़ में एक दर्द था। पहले आरवी, फिर अर्जुन का उन पर शक करना, उन्हें गुनाहगार समझना उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ गया था। अब शायद उनके अंदर और हिम्मत नहीं बची थी कि अपने बच्चों की कड़वी बातें सुने, उनके इल्ज़ामों को सह सके, उनकी आंखों में अपने लिए नफरत देख सके। अर्जुन एक पल को उन्हें देखता ही रह गया कि हर सिचुएशन में चट्टान की तरह मजबूत बने रहने वाले उसके डैड आज किसी हारे हुए खिलाड़ी जैसे लग रहे थे जो अपने हथियार डाल चुके थे। कहीं ना कहीं ये बात अर्जुन को बुरी भी लगी, पर उसने जाहिर नहीं किया और भावहीन सा बोला, आपके रूम में आपका इंतजार करूंगा मैं। अर्जुन अपनी बात कहने के बाद बिना एक पल भी वहां रुक अंदर की तरफ चला गया। अमरजीत जी उदास आंखों से उसे खुद से दूर जाते हुए देखते रहे। दो दिन पहले उन्हें पता चला था कि देवकी जी अब इस दुनिया में नहीं रही। अब तक एक उम्मीद थी कि शायद वो कभी उन्हें वापस मिल जाएं, पर दो दिन पहले उनकी वो उम्मीद भी टूट गई थी। उनके जाने की खबर सुनकर वो किस कदर दर्द से तड़पे थे ये वही जानते थे, और उसके बाद उनके दोनों बच्चे भी उनसे नफरत करने लगे। ये बात उनकी रही सही हिम्मत भी तोड़ गई थी। अमरजीत जी कुछ पल सूनी निगाहों से उस दिशा में देखते रहे जहां से अभी अभी अर्जुन गया था, फिर थके कदमों से अंदर की तरफ बढ़ गए। कुछ देर बाद वो रूम में पहुंचे तो अर्जुन बेचैनी से यहां से वहां चक्कर काट रहा था। कहिए, क्या बात करनी है आपको हमसे? अमरजीत जी की आवाज कानों में पड़ते ही अर्जुन ने पलटकर उन्हें देखा, फिर बिना कुछ कहे जाकर दरवाजा लॉक कर दिया। वो वापस अमरजीत जी की तरफ मुड़ा तो वो अब भी उसे ही देख रहे थे। अर्जुन ने एक नजर उन्हें देखा, फिर रूम में लगे काउच की तरफ इशारा करते हुए कहा, आइए बैठकर बातें करते हैं। वो खुद जाकर काउच पर बैठ गया। अमरजीत जी भी कुछ देर बाद उसके सामने लगे काउच पर आकर बैठते हुए बोले, कहिए, क्या बात करनी है आपको हमसे? अर्जुन ने एक गहरी सांस छोड़ी, फिर उन्हें देखते हुए गंभीरता से बोला, मुझे नहीं पता कि कौन सही है और कौन गलत, इसलिए इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। कौन गुनाहगार है और कौन बेकसूर, ये फैसला मैंने वक्त पर छोड़ दिया है। शान की बातें, उसका दर्द मुझे सच्चा लगता है, पर जो उसने कहा वो सब आप कर सकते हैं, इस पर भी मैं विश्वास नहीं कर पा रहा, इसलिए अभी मैं इन सब के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। फिलहाल मैं बस अपनी तरह से एक कोशिश करने जा रहा हूं ताकि सच्चाई की तह तक पहुंचकर गुनाहगार को सबके सामने ला सकूं, और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं इन सब प्रॉब्लम्स का अंत करने का। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले मुझे आपसे सच्चाई जाननी है, और इस बार कोई शॉर्ट स्टोरी नहीं सुननी मुझे, बल्कि असल में उस दिन क्या हुआ था उसके बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात जाननी है। अमरजीत जी खामोशी से अर्जुन को देख रहे थे जो उसे काफी गंभीर लग रहा था। अमरजीत जी ने एक गहरी सांस छोड़ी और अपनी आंखों को बंद कर लिया और कहना शुरू किया, उस दिन थिएटर में रिहर्सल जोरों शोरों से चल रही थी। एक हफ्ते बाद हमारा प्ले था और उस प्ले के लिए हमने हमारा सब कुछ दाव पर लगा दिया था। उससे पहले कई प्ले ऑर्गेनाइज किए थे हमने और सुभाष ने मिलकर, पर वो प्ले हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसके लिए हमने न सिर्फ अपनी सारी प्रॉपर्टी और नाम दाव पर लगाया था बल्कि मार्केट से भी बहुत पैसा उठाया हुआ था। इन्वेस्टर्स का भी बहुत प्रेशर था और वो प्ले बहुत बड़े स्केल पर ऑर्गेनाइज किया जाने वाला था, इसलिए कहीं किसी किस्म की गलती हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हमने और सुभाष ने बहुत मेहनत की थी और वो एक प्ले हमारी जिंदगी बदल सकता था। उस दिन हम रिहर्सल ही देख रहे थे तभी हमें किसी अनजान नंबर से फोन आया, तो सुभाष को वहां छोड़कर हम साइट में चले गए। बताते हुए अमरजीत जी अब अतीत की यादों में खोसे गए। फ्लैशबैक। अमरजीत जी ने साइट में जाकर कॉल रिसीव किया। हेलो, हु इज स्पीकिंग? अननोन नंबर था तो उनका यह सवाल पूछना स्वाभाविक था। उनके सवाल पर दूसरे तरफ से किसी की भारी भरकम आवाज आई, मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है, बल्कि मैंने तुम्हें फोन क्यों किया ये जानना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। तो सुनो, जिसे तुम अपना जिगरी यार समझते हो, उसने तुम्हारे इस सीक्रेट पे की स्क्रिप्ट तुम्हारे कंपेटिटर को बेच दी है, जिसके बदले उसे 25 लाख रुपए मिले हैं। और जिस प्ले को तुम एक हफ्ते बाद दुनिया के सामने करने वाले हो, वो आज ड्रीम स्टेडियम में शुरू हो चुका है, और तुम्हारे अपने दोस्त ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। जिस प्ले पर तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अब ना वो प्ले तुम्हारा रहा और ना ही तुम्हारी प्रॉपर्टी। तुम्हारे जिगरी यार ने तुम्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है, और तुम्हारी बर्बादी के बदले उसने अपनी जिंदगी आबाद कर ली है। जैसे ही वो इंसान खामोश हुआ, अमरजीत जी ने हल्के गुस्से में कहा, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, और हो कौन तुम ये? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे अपनी इन झूठी बातों में फंसा लोगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक अनजान आदमी के लिए मैं अपने यार पर शक कर ही नहीं सकता। तो अपनी ये बकवास बंद करो और दोबारा मुझे फोन मत करना। वो फोन काटने ही जा रहे थे कि दूसरे तरफ से एक शैतानी हंसी गूंज उठी। अमरजीत जी स्तब्ध से रह गए। कहीं ना कहीं उनके मन में भय घर करने लगा था कि अगर ये बातें सच हुई तो क्या होगा। अमरजीत की परेशान से उस हंसी को सुन रहे थे जो उन्हें उनका मजाक उड़ाती प्रतीत हो रही थी। वो तो फोन काटना चाह रहे थे पर काट ना सके। कुछ पल बाद हंसी बंद हुई और दूसरे तरफ से फिर वही भारी सी आवाज आई। इतना भरोसा है अपने इस दोस्त पर? मुझे ये बड़े ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बहुत जल्द तेरा ये विश्वास टूटकर चकनाचूर होने वाला है, क्योंकि सच तो यही है कि अपने जिस दोस्त पर तू खुद से ज्यादा भरोसा करता है, उसे अपना भाई मानता है, तेरे उसी दोस्त ने तेरे पेट में छुरा घोंपा है। मेरी बातें झूठी और बकवास लग रही हैं तुझे? लगनी भी चाहिए, क्योंकि मैं अनजान हूं तुम्हारे लिए, पर तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा ही तैशी हूं। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता तो जाकर खुद अपनी आंखों से देखो कि कितना बड़ा धोखा किया है तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त ने।
इतना कहकर उस शख्स ने फोन काट दिया। अमरजीत जी परेशान से खड़े ही रह गए। दिमाग उस अनजान इंसान की कही बातों पर यकीन करने को कह रहा था कि कोई इतना बड़ा झूठ आखिर क्यों बोलेगा, और दिल वो अपने दोस्त पर शक करने को तैयार नहीं था कि वो उन्हें धोखा दे सकता है। टू बी कंटिन्यूड।